अरुणिमा रसोई में खाना बना रही थी। कल रात आस्तिक ने उसकी जो हालत की थी उसे छुपाने के लिए उसने फुल स्लीव्स ब्लाउज पहना हुआ था और हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी। अरुणिमा ने मेकअप से भी खुद को ढकने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अरुणिमा की जो हालत थी कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। उसके होंठ सूजे हुए थे, चेहरे पर हताशा नजर आ रही थी और हाथों की उंगलियों में भी चोट के निशान थे। एक सर्वेंट ने अरुणिमा के पास आते हुए कहा, रानी साहिबा, खाना मैं बना देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अरुणिमा ने धीरे से उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बना लूँगी, आप बस सब्जियाँ काट दीजिए। अगर राजा साहब को पता चला कि मैंने खाना नहीं बनाया तो गुस्सा होंगे। सर्वेंट को अरुणिमा की हालत पर तरस आ रहा था। उसने धीरे से सर हाँ में हिलाया और अपने काम पर लग गई। वो सच में अरुणिमा की मदद करना चाहती थी, क्योंकि जब से अरुणिमा इस घर में आई थी उसने एक भी दिन अरुणिमा के चेहरे पर खुशी नहीं देखी थी। अरुणिमा का पूरा शरीर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे कि कोई अभी भी उसके ऊपर लोहे की रोड से पिटाई कर रहा हो। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था, उसे चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन अरुणिमा अपने पैरों को घसीटते हुए किसी तरीके से खुद को रसोई में ले आई थी। अरुणिमा खाना बना रही थी कि तभी रसोई में अमृता ताई आ जाती हैं और वो अरुणिमा को देखती हैं। अरुणिमा की हालत देखकर अमृता ताई की आंखें छोटी हो गईं। वो सबसे पहले रसोई में जाकर वहां के सेवकों को बाहर जाने के लिए कहती हैं। उसके बाद अरुणिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगती हैं। अरुणिमा का पूरा चेहरा जो मुरझाया हुआ था वो आज सच में काला पड़ गया था। अमृता ताई की आंखें कीखी हो गईं। उन्होंने अरुणिमा को देखकर कहा, अरुणिमा, आस्तिक ने कुछ कहा? उसने हाथ उठाया तुम पर? मुझे सच सच बताओ, क्या आस्तिक ने तुम्हें पीटा है? अरुणिमा हैरानी से अमृता ताई को देखती है, लेकिन फिर अपना चेहरा नीचे करके वो धीरे से ना में सर हिलाती है और कहती है, नहीं अमृता ताई, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अमृता ताई ने गुस्से में अरुणिमा को देखते हुए कहा, तुम कितनी ठीक हो ये तो मुझे दिख ही रहा है, अंधी नहीं हूं मैं, एक औरत होने के नाते तुम्हारे दर्द को तुम्हारे कहे बिना पहचान सकती हूँ, तो तुम्हारी जख्मों को भी बहुत अच्छे से पहचान सकती हूँ, और आस्तिक ऐसा कैसे कर सकता है? रुको, उसे तो मैं बताती हूँ। ये कहते हुए अमृता ताई गुस्से से बाहर जाने के लिए मुड़ती हैं, तभी अरुणिमा नीचे जमीन पर बैठकर उनके पैर पकड़ लेती है। अमृता ताई हैरानी से अरुणिमा को देखने लगती हैं। अरुणिमा रोते हुए कहने लगती है, नहीं ताई, आप उन्हें कुछ मत कहिए, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें कुछ मत कहिए, वो मुझे बहुत मारेंगे, इस बार तो वो मुझे चांद से मार डालेंगे, मुझ पर रहम करिए। अमृता ताई की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उनका दिल कांप गया। अरुणिमा बुरी तरह से डर से कांप रही थी और उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। अरुणिमा की ऐसी हालत देखकर अमृता ताई की आंखों में आंसू आ गए। अरुणिमा क्या क्या देख रही थी अपनी जिंदगी में, उसे कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमृता ताई ने फिर भी अपने मन में सोचा, उसे आस्तिक से बात करनी ही होगी, वो इस फूल सी बच्ची को ऐसे प्रताड़ित नहीं कर सकता है, आखिर क्या वजह है जो वो अरुणिमा के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। अमृता ताई ने धीरे से अरुणिमा को खड़ा किया और उसके आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाया और कहा, ठीक है अरुणिमा, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं आस्तिक से कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन फिर तुम मुझे बताओ कि आस्तिक तुम्हारे साथ ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है, आखिर वो तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है? अरुणिमा धीरे धीरे पानी पीती है और सुबकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें इस बारे में कुछ मत बताइएगा। अमृता ताई ने जब अरुणिमा को और रोते हुए देखा तो उन्होंने अरुणिमा को अपने गले लगा लिया और उसके सर को सहलाते हुए कहने लगी, मैंने कहा ना तुम फिक्र मत करो, अब जो होगा अच्छा होगा। रॉयल फैशन हाउस। प्रणाली अपने केबिन में बैठकर नए डिजाइन पर काम कर रही थी। जाहिर सी बात है उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी प्रणाली अपने काम को लेकर बहुत सीरियस थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और उसकी असिस्टेंट अंदर आते हुए कहती है, मैडम कोई आपसे मिलने आया है। प्रणाली जो कि किसी डिजाइन में बिजी थी, वो एक हाथ से अपने पेन को घुमाते हुए कहती है, जो भी है कह दो मैं बिजी हूँ। लेकिन इससे पहले कि असिस्टेंट वापस जा पाती दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और सक्षम अंदर आते हुए कहता है, बिजी तो मैं भी हूँ लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकाल ही लेता हूँ। सक्षम की आवाज सुनकर प्रणाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो चेहरा उठाकर सक्षम को देखने लगती है। सक्षम असिस्टेंट को देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, दो कप कॉफी भिजवा दीजिए। असिस्टेंट हैरानी से प्रणाली को देखती है और फिर सक्षम को देखकर हाँ में सर हिलाती है और वहां से चली जाती है। उसकी जाते ही प्रणाली अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये क्या बदतमीजी है। सक्षम अपने कोट के बटन को सही करता हुआ अंदर आता है और सामने लगे हुए सोफे पर आराम से बैठते हुए कहता है, कॉफी मंगवाने में कैसी बदतमीजी है। प्रणाली और गुस्से में सक्षम के सामने आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे ऑफिस में आकर तुम ऑर्डर किसे दे रहे हो। सक्षम अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल को सामने टेबल पर रखते हुए कहता है, भले ही ऑफिस तुम्हारा है लेकिन इसमें बिजनेस तो मेरा भी है ना। प्रणाली घूरती हुई नजरों से सक्षम को देखती है और कहती है, तुम्हारा बिजनेस, दिमाग खराब हो गया है क्या, निकलो यहाँ से वरना गार्ड को बुलवाऊंगी।
सक्षम अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखता है और स्टाइल से बांटते हुए कहता है, राजकुमारी साहिबा, कुछ भी करने से पहले एक बार ये फाइल उठाकर तो देख लीजिए, आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। प्रणाली खा जाने वाली नजरों से सक्षम को देख रही थी। उसने गुस्से में टेबल पर पड़ी हुई फाइल उठाई और उसे खोलकर पढ़ने लगी और एक एक पन्ना पलटते हुए ही प्रणाली की आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। पूरी फाइल देखने के बाद प्रणाली ने फाइल को बंद किया और उसे टेबल पर पटकते हुए कहा, ये क्या है, ये कब हुआ, मैं ऐसी किसी बकवास पर यकीन नहीं करती हूँ। किसने किया है ये सब? ये सब तुम्हारी ही कोई चाल होगी, वरना मैं और तुम्हारी कंपनी की फैशन डिजाइनर हो ही नहीं सकता। सक्षम आराम से मुस्कुराते हुए प्रणाली को देखकर कहता है, बिल्कुल हो सकता है राजकुमारी साहिबा, मेरी टेक्सटाइल कंपनी है और आप फैशन डिजाइनर हैं और हम दोनों की कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है।